लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे दुर्व्यवहार के शिकार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर उन लोगों के लिए जिन्होंने कलीसिया के सदस्यों द्वारा दुराचार को सहन किया। हमारी अर्थ याचना है कि कलीसिया के भीतर ही वे अपनी पीड़ा का समाधान ढूंढ सकें तथा शांतिपूर्ण जीवन यापन कर सकें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामयिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंच और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओं, मुसलमानों का पवित्र महीना रमजान बुधवार 22 मार्च को सूर्यास्त के साथ शुरू हुआ। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने रमजान शुरू होने पर हार्दिक मुबारकबाद पेश की। उन्होंने वीडियो संदेश में कहा कि यह आत्ममंथन और सीखने का एक मौका है। इस मौके पर उन्होंने शांति और एकजुटता के लिए अपनी पुकार भी दोहराई है और 22 मार्च को विश्व जल दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का नेतृत्व करते हुए यूथ फॉर वाटर प्लस और यूनिसेफ इंडिया ने भारत में संयुक्त राष्ट्र के साथ साझेदारी में ओडिशा के गंजाम में गोपालपुर समुद्र तट पर बुधवार सुबह एक सफाई अभियान का आयोजन किया। इसका मकसद था जलवायु परिवर्तन से निपटने और महासागरों की रक्षा करने के लिए युवाओं के बीच जागरूकता फैलाना। समुद्र तट की स्वच्छता और सुंदरता को बहाल करने की इस गतिविधि में शामिल 250 युवाओं का नेतृत्व ओडिशा के क्लाइमेट मैन सत्यव्रत ने किया। इस अवसर पर मशहूर युवा हस्ती और योग गुरु अभिषेक मोहंती भी जॉगिंग अभियान में शामिल हुए और उन्होंने समुद्र तट पर मौजूद युवाओं के साथ योगासन भी किए। विश्व जल दिवस पर युवाओं को समुद्र तटों, जल मार्गों और अन्य जल निकायों से कचरा व मलवा हटाने, कूड़े की स्रोतों की पहचान करने, प्रदूषण फैलाने वाले व्यवहारों को बदलने में तेजी लाने तथा समुद्री मलबे की समस्या के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया। उधर सीरिया गृह युद्ध के 13वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP के अनुसार सीरिया में गृह युद्ध और हाल के विनाशकारी भूकंपों के कारण आधी से अधिक आबादी भोजन अभाव से जूझ रही है। UN खाद्य सहायता एजेंसी ने आगाह किया है कि सीरिया में लगभग 1,21,00,000 लोग खाद्य असुरक्षित हैं और करीब 30,00,000 लोगों के भुखमरी में चले जाने का जोखिम है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं महबूब खान।
UN खाद्य सहायता एजेंसी ने सीरिया के लिए बढ़ी हुई मानवीय सहायता उपलब्ध कराने की जरूरत को रेखांकित किया है, न केवल भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए बल्कि उन लोगों की मदद करने के लिए भी जो पहले से ही आसमान छूती खाद्य कीमतों, ईंधन संकट और लगातार तबाही मचा रहे जलवायु झटकों का सामना कर रहे हैं। हाल के आंकड़ों के अनुसार कुपोषण भी उफान पर है और बच्चों में विकास अवरुद्धता की दर 28% है। मातृत्व कुपोषण की दर भी अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच रही है। सीरिया में WFP के देश निदेशक केन क्रॉसली का कहना है,
There has been a pandemic. There has been a deep, pervasive economic crisis.
केन क्रॉसली कह रहे थे कि देश के लोगों ने महामारी का सामना किया है। देश में गहरा और लगातार आर्थिक संकट जारी है। एक ऐसी बड़ी विस्थापित आबादी है जिसके पास कोई उत्पादक बुनियादी ढांचा नहीं है जो काम कर सके। दरअसल भुखमरी एक ऐसे समय में बदतर हो रही है जब ऐसा महसूस हो रहा है कि देश में शांति और स्थिरता धीरे धीरे बेहतर और ज्यादा बेहतर हो रही है। सीरिया में WFP के देश निदेशक केन क्रॉसली के शब्द। इस बीच संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारियों ने सीरिया में पिछले 12 वर्षों से जारी गृह युद्ध का अंत किए जाने के लिए राजनीतिक समाधान की आवश्यकता को रेखांकित किया है। गौरतलब है कि सीरिया युद्ध 13वें वर्ष में दाखिल हो गया है। सीरिया के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत गेयर पेडरसन ने कहा है कि ये पड़ाव बड़ी संख्या में मारे गए लोगों और लाखों अन्य पीड़ितों की व्यथा पर बहुत विशेष ध्यान देने की घड़ी है।
यूक्रेन युद्ध की जांच के लिए गठित स्वतंत्र आयोग ने गुरुवार को प्रकाशित अपनी नई रिपोर्ट में कहा है कि रूस सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून और अंतर्राष्ट्रीय मानव कल्याण कानून के हनन के अनेक मामलों को अंजाम दिया है। स्वतंत्र जांच आयोग के अनुसार यूक्रेन के विभिन्न क्षेत्रों में दर्ज किए गए अनेक हनन मामलों को युद्ध अपराधों की श्रेणी में रखा जा सकता है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने शुक्रवार को महासंघ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विरुद्ध कथित युद्ध अपराध के मामलों में गिरफ्तारी का वारंट निकाला है। ज्यादा जानकारी के साथ सचिन गौड़।
यूएन जांच आयोग ने यूक्रेन के 50 से ज्यादा इलाकों में जाकर लगभग 600 प्रत्यक्षदर्शियों से बातचीत के आधार पर अपनी ये रिपोर्ट तैयार की है। जांच कमीशन के प्रमुख एरिक मोसे ने गुरुवार को जिनेवा में जानकारी देते हुए कहा,
The Commission has concluded that Russian authorities have committed numerous violations of international humanitarian law and international.
आयोग के प्रमुख एरिक मोसे कह रहे थे कि जांच आयोग का निष्कर्ष है कि रूसी एजेंसियों ने विविध प्रकार के युद्ध अपराधों के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय मानव कल्याण और मानवाधिकार कानून के हनन के अनेक मामलों को अंजाम दिया है। इनमें आम नागरिकों और ऊर्जा संबंधी बुनियादी ढांचों पर हमले करना, मनमर्जी से लोगों की हत्या करना, गैर कानूनी ढंग से लोगों को बंदी बनाया जाना, यातना देना, बलात्कार और अन्य प्रकार की यौन हिंसा का शिकार बनाया जाना है। यूक्रेन से बच्चों को जबरन रूसी महासंघ भेजे जाने के आरोपों की भी जांच की गई। आयोग ने चिंता जताई है कि मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय मानव कल्याण कानून का हनन किया गया और बच्चों के हस्तांतरण व उन्हें देश निकाला दिए जाने के मामलों को युद्ध अपराध की श्रेणी में रखा जा सकता है। इस बीच हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने रूसी महासंघ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और राष्ट्रपति कार्यालय में कमिश्नर मारिया लुवोवा बेलोवा के विरुद्ध गिरफ्तारी के वारंट जारी किए हैं। आईसीसी ने उन्हें यूक्रेन युद्ध के दौरान युद्ध अपराधों का जिम्मेदार ठहराया है, जिसमें बच्चों को गैर कानूनी ढंग से यूक्रेन से रूस हस्तांतरित करना है।
म्यांमार के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष दूत नोएलिन हेजर ने गुरुवार को यूएन महासभा की एक बैठक को संबोधित करते हुए सचेत किया कि क्रूरतापूर्ण सैन्य तख्तापलट के परिणाम स्वरूप उभरी हिंसा देश में चिंताजनक स्तर पर अब भी जारी है और लोग कठिन हालात में जीवन गुजार रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि म्यांमार की जनता के नेतृत्व में देश का भविष्य तय किए जाने की आवश्यकता है और इसमें सभी आवाजों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना होगा। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं शिवानी काला।
म्यांमार के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत नोएलिन हेजर ने गुरुवार को सचेत किया कि देश में क्रूरतापूर्ण सैन्य तख्तापलट के परिणाम स्वरूप उभरी हिंसा अब भी चिंताजनक स्तर पर जारी है। यूएन दूत ने क्षोभ प्रकट करते हुए कहा कि म्यांमार में फरवरी 2021 को हुए सैन्य तख्तापलट का देश और स्थानीय जनता पर विनाशकारी असर हुआ है। विशेष दूत ने बताया कि 1 फरवरी को सैन्य नेतृत्व ने देश में आपातकाल की अवधि बढ़ाई है, हवाई बमबारी की जा रही है, आम लोगों के घर जलाए गए हैं और सत्ता पर पकड़ बनाए रखने के लिए मानवाधिकार उल्लंघन के गंभीर मामलों को अंजाम दिया गया है। बताया गया है कि म्यांमार के 47 बस्तियों में मार्शल लॉ लागू है। विशेष दूत हेजर के अनुसार क्रूर दमन के बावजूद देश में व्यापक स्तर पर प्रतिरोध जारी है। मौजूदा हालात में 1,76,00,000 लोगों को मानवीय सहायता की जरूरत है। नोएलिन हेजर ने सदस्य देशों से रोहिंग्या मानवीय संकट के लिए 2023 साझा कार्रवाई योजना का समर्थन देने का आग्रह किया है।
आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे। अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।
करता था गिर कर जमीन।
वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। न्यूयॉर्क में जारी संयुक्त राष्ट्र संघीय जल सम्मेलन से जुड़े एक कार्यक्रम में भाग लेने वालों को प्रेषित संदेश में संत पापा फ्रांसिस ने सब तक जल की आपूर्ति के सार्वभौमिक मानवाधिकार को सुनिश्चित करने हेतु ठोस और प्रभावी कार्रवाई का आह्वान कर कहा है कि जल की आपूर्ति जीवन का अधिकार है। 2010 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने जल की आपूर्ति को एक मौलिक मानवाधिकार घोषित किया था। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा मनाए जा रहे विश्व जल दिवस की पृष्ठभूमि में संत पापा फ्रांसिस ने स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता तक सार्वभौमिक पहुंच प्राप्त करने के लिए नए सिरे से अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की तत्काल बहाली हेतु अपने आह्वान को दोहराया। 22 से 24 मार्च तक जारी संयुक्त राष्ट्र संघीय जल सम्मेलन और इससे जुड़े जल एवं आशा, सतत विकास और हमारे सामान्य घर की देखभाल के प्रचार के लिए अनुभव और चुनौतियां शीर्षक से जारी अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी को प्रेषित संदेश में संत पापा फ्रांसिस ने कहा, मानवता के अखंड विकास की आम सहमति बनाने के लिए संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सहयोग करना चाहिए। संगोष्ठी के वक्ता जल और विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए आज के विश्व के समक्ष प्रस्तुत चुनौतियों का समाधान पाने हेतु रणनीतियों पर चर्चा कर रहे हैं। इनमें जल और जलवायु परिवर्तन, जल के मानवाधिकार की रक्षा में राष्ट्रों और सरकारों की भूमिका, देशज और स्वदेशी लोग तथा जल एक मानवाधिकार विषय प्रमुख हैं। अपने संदेश में संत पापा फ्रांसिस ने संगोष्ठी के आयोजन के लिए समर्थन व्यक्त किया और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी आवाज उठाने के लिए एक साथ आने वाले विभिन्न संगठनों की प्रशंसा की। संत पापा फ्रांसिस ने कहा कि उक्त सम्मेलन मानवता के सर्वांगीण विकास के लिए ठोस और प्रभावी कार्रवाई की दिशा में मानवता के समक्ष प्रस्तुत खतरनाक और नाटकीय मुद्दों के समक्ष आशा की एक नदी है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन और लगातार गहरी होती असमानताओं के परिणामों के लिए ठोस और प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता है और इसलिए राष्ट्रों के बीच घनिष्ठ सहयोग की नितांत आवश्यकता है। संत पापा फ्रांसिस ने आशा व्यक्त की कि न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघीय जल सम्मेलन विश्व के लिए आवश्यक समाधान खोजने में समर्थ होगा ताकि पानी और स्वच्छता तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करके हम इस अधिकार को पूरी तरह से प्राप्त कर सकें जो जीवन का अधिकार है। और इसी बीच न्यूयॉर्क में सतत विकास हेतु जल 2018-2028 अंतर्राष्ट्रीय दशक के उद्देश्यों की व्यापक समीक्षा पर आयोजित मध्यावधि सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ में परम धर्म पीठ के स्थायी पर्यवेक्षक वैटिकन के वरिष्ठ महाधर्माध्यक्ष गैब्रियल काच्या ने कहा कि जल पुनर्जीवन का प्रतीक है। महाधर्माध्यक्ष ने कहा, इतिहास के अंतराल में अलग अलग समय और स्थानों पर पानी का मौलिक महत्व सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक परंपराओं में परिलक्षित हुआ है। उन्होंने कहा, पानी पुनर्जीवन का प्रतीक है क्योंकि यह वह पेय है जिसकी हमें लगातार आवश्यकता होती है। यह शुद्ध करता और जीवन को लगातार पुनर्स्थापित करता है। महाधर्माध्यक्ष काच्या ने कहा, पानी के बिना जीवन नहीं है। हमारा शरीर अधिकांश पानी से बना है और हम अपने अस्तित्व के लिए इस पर भरोसा करते हैं। फिर भी इस संसाधन पर वह ध्यान नहीं दिया गया है जिसका यह हकदार है। हम आज भी पानी को बर्बाद करने, उसकी अवहेलना करने या उसे प्रदूषित करने की गलती करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि इस तथ्य को ध्यान में रखना होगा कि पानी तक सार्वभौमिक पहुंच, इसका धारणीय और जिम्मेदार उपयोग तथा प्रबंधन पूरे मानव परिवार की सामान्य भलाई की उपलब्धि के लिए अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि जल के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय आयामों को याद रखना आवश्यक है। उन्होंने इस बात का स्मरण दिलाया कि दुनिया की लगभग आधी आबादी अभी भी गरीबी में जी रही है और गरीब ही हैं जो पानी की कमी से सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। यहाँ तक कि जब पानी उपलब्ध होता है तब भी लाखों लोगों की पहुंच असुरक्षित पानी तक ही होती है, जिसके परिणाम स्वरूप कई मौतें होती हैं और पानी से संबंधित बीमारियां फैलती हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी ने मौजूदा सामाजिक और आर्थिक असमानताओं तथा सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों के बीच जल सेवाओं की अनुपस्थिति या अक्षमता के कारण होने वाले नुकसान को उजागर किया है। उन्होंने कहा कि एक ओर पानी का अभाव है तो दूसरी ओर बहुत से स्थानों में पानी बर्बाद हो जाता है। संत पापा फ्रांसिस के शब्दों में पानी की समस्या आंशिक रूप से एक शैक्षिक और सांस्कृतिक मुद्दा है, क्योंकि इस तरह के व्यवहार की गंभीरता के बारे में बहुत कम जागरूकता है। मोरक्को में एकत्र 75 देशों के चिकित्सकों और न्यायविदों ने एक सम्मेलन के उपरांत काजाब्लांका घोषणा पर हस्ताक्षर कर तथाकथित सरोगेसी यानी किराए के गर्भ पर प्रतिबंध लगाने हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय संविदा का आह्वान किया है। वैटिकन के समाचार पत्र लुजरवातोरे रोमानो में प्रकाशित एक लेख में बताया गया कि सरोगेसी पर वैश्विक प्रतिबंध और इस विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय संविदा अपनाने हेतु मोरक्को में 75 राष्ट्रों के चिकित्सकों सहित लगभग 100 मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्री एकत्र हुए, जिन्होंने काजाब्लांका घोषणा पर हस्ताक्षर किए। विश्व के 212 राष्ट्रों में से 20 राष्ट्र ऐसे हैं जहां सरोगेसी यानी कि किराए के गर्भ जैसी प्रक्रिया पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इनमें ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमरीका के 4 राज्य, यूके, कनाडा, बेलारूस, रूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, भारत, इजराइल, मेक्सिको, नेपाल, थाईलैंड, ग्वाटेमाला, साइप्रस, ग्रीस, बेल्जियम, चेक गणराज्य और आइसलैंड शामिल हैं। घोषणा पत्र के हस्ताक्षरकर्ताओं का कहना है कि वे उन लोगों की पीड़ा से अवगत हैं जो प्रजनन नहीं कर सकते, हालांकि इस तथ्य से सहमत हैं कि सरोगेसी मानव गरिमा को कम करती तथा महिलाओं और बच्चों के उपभोक्ताकरण को प्रश्रय देती है। संयुक्त राष्ट्र संघीय बाल आपात कोष यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट जारी कर कहा है कि यमन में इस समय 1.1 करोड़ बच्चों को मानवतावादी सहायता की नितांत आवश्यकता है। 24 मार्च को जारी रिपोर्ट में यूनिसेफ ने कहा कि 8 वर्षों के क्रूर संघर्ष ने यमन में लाखों बच्चों के जीवन को तबाह कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार 22 लाख बच्चे कुपोषण से पीड़ित हैं, जिनमें 5,40,000 बच्चे गंभीर तीव्र कुपोषण से पीड़ित हैं। बताया गया कि मार्च 2015 और नवंबर 2022 के बीच संयुक्त राष्ट्र ने सत्यापित किया कि 11,000 से अधिक बच्चे मारे गए या गंभीर रूप से घायल हुए। 4,000 से अधिक बच्चों को सेना में भर्ती किया गया और संघर्षरत समूहों द्वारा उनका उपयोग किया गया। इसके अलावा 900 से अधिक हमले शैक्षिक और स्वास्थ्य सुविधाओं पर किए गए। यूनिसेफ की रिपोर्ट में कहा गया कि युद्धों की वजह से 80 लाख लोगों को मानसिक स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक सेवाओं की आवश्यकता है। 23 लाख से अधिक बच्चे अभी भी आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के शिविरों में जीवन यापन कर रहे हैं। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।